कबीर मत में धर्म देवता का अवशेष। संक्षेप में यह स्थिति है कि राढ़ भूमि पूर्वी बिहार झारखंड और उड़ीसा में एक ऐसे परम देवता की पूजा प्रचलित थी और कहीं कहीं अब भी है, जिसका नाम धर्म और निरंजन था और जिस पर बौद्ध मत का जबरदस्त प्रभाव था। यह भी हो सकता है कि वह बौद्ध मत का आरंभ में प्रच्छन्न रूप रहा हो पर बाद में विस्तृत रूप बन गया हो। कबीर मत को इस पंथ से निपटना पड़ा था। विशेष रूप से कबीर पंथ की दक्षिणी शाख अर्थात धर्मदासी संप्रदाय को इस प्रबल प्रतिद्वंदी मत को आत्मसात करने का श्रेय प्राप्त है। इस संप्रदाय को मानने वालों पर अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए कबीर मत में उनकी समूची जटिल सृष्टि प्रक्रिया और पौराणिक कथाएं ले ली गई थी। केवल इतना सुधार सर्वत्र कर लिया गया था कि निरंजन के प्रभाव से जगत को मुक्त करने के लिए सत्य पुरुष ने बार बार ज्ञानी जी की इस धरा धाम पर भेजा ज्ञानी जी को इस धरा धाम पर भेजा था। ज्ञानी जी कबीर का ही नामांतर है। इस प्रसंग में लक्ष्य करने की बात यह है कि जिस प्रकार उड़ीसा में बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म के रूप में आविर्भूत होकर ब्राह्मणों का कोपभाजन बना था, उसी प्रकार उन क्षेत्रों में भी हुआ था जो बीजक के प्रचार क्षेत्र में आते थे। विप्र मतीशी में ब्राह्मणों के वैष्णव विद्वेष का उल्लेख है। हरि भक्तन के छूत लगाई विष्णु भक्त देखे दुख पाए। कबीर बानी और अनुराग सागर में कबीर दास के मुंह से कहलवाया गया है कि काल कबीर के नाम पर 12 पंथ चलाएगा। जो लोगों को कबीर की वास्तविक शिक्षाओं से वंचित रखकर उन्हें भ्रम के फंदे में डाल रखेगा। कबीर बानी के अनुसार इन 12 मतों में से तीसरे का नाम मूल निरंजन मत है। हमें किसी अन्य मूल से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मूल निरंजन मत क्या है। कबीर बानी में केवल इसका नाम भर दिया गया है, परंतु अनुराग सागर में इस पंथ का कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह वर्णन भी अस्पष्ट ही है। इससे ही पता चलता है कि काल का मनभंग नामक दूत मूल कथा को लेकर पंथ चलाएगा और अपने पंथ का नाम मूल पंथ कहेगा। वह जीव का लूदी नाम समझाएगा और इसी नाम को पारस कहकर प्रचार करेगा। भंग शब्द का सुमिरन मुंह से कहेगा और समस्त जीवों को एक साथ पकड़कर रखेगा। ऐसा जान पड़ता है कि कबीर पंथ की प्रतिष्ठा के बाद भी मूल निरंजन संप्रदाय ने एक बार सिर उठाया था और उस मूल कथा को आश्रय करके अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी चाहिए थी, जिसे कबीर पंथी साहित्य में कबीर महिमा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया है। परंतु कबीर पंथी पुस्तकों से मालूम होता है कि इस मूल कथा को आश्रय करने की अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास करने वाला यह मूल निरंजन पथ अपने को कबीर मतान्यायी ही मानता है। जो हो, कबीर साहित्य से इस विस्मृत किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण मत का यत्किंचित परिचय मिलता अवश्य है। कबीर पंथ के सृष्टि प्रक्रिया विषयक पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण लेखक ने अन्यत्र दिया है। उसका पुनर्लेख यहाँ विस्तार भय से छोड़ दिया जा रहा है। इससे हम निम्नलिखित शीर्षक निष्कर्षों में पर पहुँचते हैं। पहला, कबीर पंथ का एक ऐसा प्रतिद्वंदी मार्ग था जिसके परम देवता निरंजन थे। इस देवता के दूसरे नाम धर्मराज और काल थे। इस निरंजन का निवास स्थान उत्तर में मानसरोवर में था। इस निरंजन का निवास स्थान उत्तर में मानसरोवर में था। तीसरा, ब्रह्म का चलाया हुआ ब्राह्मण मत निरंजन को समझ न सकने के कारण मिथ्यावादी और स्वार्थी हो गया। यह ब्राह्मण मत भी कबीर पंथ का प्रतिद्वंदी था। चौथा, निरंजन को पाने के लिए शून्य का ध्यान आवश्यक है। पांचवा, उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप हैं। और छठा, द्वितीय चतुर्थ और पंचम निष्कर्ष के अनुमान किया जा सकता है कि निरंजन बुद्ध का ही नाम था। सातवां, निरंजन ने सारे संसार को भरमा रखा है, ऐसा प्रचार कबीर पंथ को करना पड़ा था। आठवां, अनुराग सागर, श्वास गुंजार आदि ग्रंथों से केवल दो प्रतिद्वंदी मतों का पता चलता है। निरंजन द्वारा प्रवर्तित निरंजन मत और ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मण मत, तीसरा मत विष्णु द्वारा प्रवर्तित वैष्णव मत है। कबीर पंथ के ग्रंथ इस मत को कथनचित अनुकूल पाते हैं। नवा, श्वास गुंजार आदि ग्रंथों से प्राप्त यह कथा प्राय उलझे हुए रूप में मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह किसी भूली पुरानी परंपरा का भग्नावशेष है। इस प्रकार यद्यपि रचना के दृष्टि से बहुत सी रचनाएं परिवर्तित हो सकती हैं, फिर भी उनसे अनेक भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ सकता है। कबीर पंथी साहित्य के अध्ययन के बिना जिस प्रकार धर्म और निरंजन मत का अध्ययन अधूरा रह जाता है, उसी प्रकार बंगाल, उड़ीसा और पंजाब आदि प्रांतों के निरंजन मत का अध्ययन किए बिना कबीर साहित्य का अध्ययन भी अपूर्ण रह जाता है। भारतीय साधना साहित्य में यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि रचना काल की दृष्टि से परवर्ती होने पर भी कभी कभी पुस्तकें अत्यंत पुरातन परंपरा का पता देती हैं। गोरक्ष संप्रदाय की अनुश्रुतियां, कबीर पंथ के ग्रंथ, धर्म पूजा विधान साहित्य यद्यपि रचना काल की दृष्टि से बहुत अर्वाचीन है, तथापि वे अनेक पुरानी परंपराओं के अवशेष हैं। समूची भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोक भाषाओं का अध्ययन साहित्य में अनेक अधभूली भूली और उलझी हुई परंपराओं के सुलझाने में अमूल्य सहायता पहुंचाता है। भारतीय संस्कृति के विद्यार्थी के लिए इनकी अपेक्षा हानिकर है।